أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام سورة الرحمن. میں نے جس سوچ کے ساتھ پڑھا یا اللہ نے میری زبان پہ نکالا وہ کیا ہے, ایک وہ دن تھا جس دن ہم یہ کورس شروع کر رہے تھے اور آج وہ دن ہے کہ اس کورس کا آخری دن ہے. کورس بھی شروع ہوا, یہ بھی ایک چیز تھی نا, یہ بھی ختم ہو گیا, یہ بھی کلو من علیہا فان, یہ بھی ایک فانی چیز تھی. لیکن اس کورس میں سے باقی کیا رہ جائے گا؟ وجہ ربک ذو الجلال والاکرام, ہر وہ کام جو رب ذو الجلال کے چہرے کی, اور چہرہ رضامندی کی بھی ایک علامت ہوتا ہے. ہم جس سے خوش نہیں ہوتے ہم اس سے نظریں نہیں ملاتے, دل میں کدورت ہو تو انسان کسی کو دیکھ کر خوش نہیں ہوتا. تو اللہ کے چہرے کے لیے ہم نے اس پورے کورس میں سے جو کیا نا وہ بچے گا. اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ اب اللہ نے ہمیں اتنا کچھ تو ضرور دے دیا کہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ پتہ نہیں کرنا کیا ہے. ایسے ہی ہے, کیا رہ گیا جو آپ کو لگتا ہے کہ جیسے انگلی پکڑ کے بندہ چلتا ہے نا, ڈیٹیلز اور باتیں تو اتنی ہیں. اور میں آپ کو سچ بتاؤں, جس سوچ کے ساتھ یہ کورس شروع کیا تھا اس میں سے صرف میں نے ایک ٹاپک چوز کیا ہے, اس کے ٹوٹل 11 ٹاپک تھے. وہ نہیں دیا, وہ شاید آپ کے لیے اللہ نے اگلے سال میں دینا ہوگا کیونکہ وہ اس سے بھی ایک اور لیول اونچا ہے. مجھے لگا کہ آپ کے لیے وہ جھل ہوگا. تو ہمیشہ یاد رکھیے وہی چیز بچے گی جو اللہ کے ساتھ ہوگی. کل کے سبق کو ذرا سا دیکھتے ہیں پھر انشاءاللہ آج کے سبق پہ جائیں گے. ڈے 9 کے ریکیپ پوائنٹس. دائی کے لیے اصول, ایتھکس فار اے دائی. کیا یعنی جو دعوت دے رہا ہے اس کو کچھ چیزوں پہ غور و فکر کرنا چاہیے, اور وہ کیا ہے کہ اپنے اوپر لیتے ہوئے ہمیشہ یہ چیز یاد رکھے کہ اگر مجبوری کے ساتھ بھی گناہ کرتی ہو نا تو وہ بھی گناہ ہے. اکراہ کے ساتھ بھی اگر غلط کام آپ کرتے ہیں تو گناہ ہوتا ہے, یہ الگ بات ہے کہ اس میں رخصت مل جائے گی. ایک ہوتا ہے گناہ ہو ہی نہ, ہم تو پھر سارے دعائیں کریں گے اللہ ہمیں مجبوری کر دے اور ہم گناہ کرتے ہی رہیں. کسی کے مجبور کرنے پہ, کسی کی خوشی سے ہم خود مجبور ہو جائیں کسی کو راضی رکھنے کے لیے, کسی بھی رنگ میں ہم گناہ کرتے ہیں لیکن گناہ ہوتا ہے. تو کبھی بھی اس دعوت کے راستے میں گناہوں کو شعار نہیں بنانا. پھر آپ دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو اپنی رحمت سے معاف کریں گے. یعنی جب اکراہ کے ساتھ گناہ ہوتے ہیں نا تو دو چیزیں ہیں. پہلی بات کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے بخشش کی دعا کریں, ہمیشہ کہتے رہیں کہ اللہ میرے سے زیادہ گناہ گار کوئی نہیں. یاد رکھیے جب دعوت دینے والے کے اندر خود اپنے گناہوں کا احساس ہوتا ہے نا تو اس کی آواز میں عاجزی اور درد آتا ہے کہ اللہ میں تو خود ابھی بڑا گناہ گار ہوں, دوسروں کو بھی کہہ ہی رہی ہوں, ان کے ساتھ مجھے بھی معاف کر دے. اور اگر آپ کے اپنے اندر گناہوں سے زیادہ نیکیوں کا شوق آ گیا نا, نیکی بہت ہو گئے ہیں, تو پھر آپ کی آواز میں سختی آئے گی. جب آپ گناہوں کی معافی مانگیں گے نا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ پھر اپنی رحمت سے معاف فرما دیں گے. پھر اسی طرح ایک چیز ہم نے کل سیکھی کہ دعوت اللہ کے راستے میں من مانیاں نہیں کرنی, جو بات کہہ دی جائے اس کو ماننا چاہیے. اور اس دور میں چونکہ اصحاب رسول کے سامنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک امیر, لیڈر, استاد, مربی, مزکی, کچھ بھی کہہ لیجئے, اس روپ میں تھے, تو آپ کے اصحاب کو کیا حکم دیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کی اتباع کرو. ان تین کو جمع کر لینا, اس کا نام ہے سمع اطاعت. سمع کے پہلے سنو تو صحیح, پھر اطاعت ہے کہ آپ مانو. کئی لوگ بات ہی نہیں پوری سنتے, آگے سے بولنے لگ جاتے ہیں, عذر اپنی صفائیاں پہ. ایکچولی کبھی کوئی ایسا کرے مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے. میں کہتی ہوں بات سن تو لے صبر سے, کہنے والے نے کوئی اتنا بڑا جرم تو نہیں کر دیا اگر آپ سے کسی بات پہ کچھ پوچھ ہی لیا. پہلے سنیے, اپنے بڑوں کی بات کو سننا یہ بھی صبر محض ہے. وہ سننے کے بعد کرنا کیا نہ کرنا وہ بات کی بات ہے, سما. اور جو سنتا نہیں وہ کبھی نہیں مانے گا. اور جب بھی آپ خود کو دیکھیں, میرے سے بڑا یا جو کوئی میرے اوپر نامینیٹ ہو یا مجھے کوئی انسٹرکشنز ملے, کیا میں اس کی بات سننے سے پہلے بیچ میں بول پڑتی ہوں؟ تو پھر اندر تکبر ہے, خود پسندی ہے, بڑائی ہے. یہ کوئی لکھی نہیں ہوتی چیزیں چہروں پہ, سلیٹس پہ, کہ یہ لکھا ہے. یہ فیس ریڈنگ اور ان باتوں سے پتہ چل جاتا ہے اس بندے کے اندر کیا ہے. دیکھیں نا, آپ تو اندر سے خود ہی اتنے نیک, اچھے, پاک, جو اپنے ہر بات پہ تو گزر ہے, تو پھر آپ سنیں گے نہیں. تو سننا شرط, چپکے سے سنیے. آپ کا انچارج ہے, آپ کا ایڈمن ہے, آپ کا ذمہ دار ہے, آپ کا استاد ہے, آپ کا جی پی اے گروپ لیڈر ہے, سنیے پہلے بات کیا ہوگا. ساری بات اس کی غلط ہوگی, बिल्कुल नहीं आपको समझा, आपके हालात को वो अंडरस्टैंड ही नहीं कर, फिर क्या हुआ? सुन लीजिए, आधा अजर है इसमें, और फिर सुन के मान लेंगे तो पूरा अजर हो जाएगा। तो समय इतात के बगैर बड़े बड़े काम नहीं होते। अपनी मर्जियां करके दीन फिर आप अल्लाह की मर्जी का लोगों को नहीं दे सकते। फिर नेक्स्ट देखिए, बहुत ही खूबसूरत चीज़ है जो आपके अंदर ठहराव लाएगी, जो आपका है वो कभी आपके हाथ से नहीं जाएगा। सब्र सुकून इख्तियार करें, अपने अंदर ठहराव लाएं। सच है कि झूठ? हमें क्या चीज़ बेसब्रा करती है, हाय 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 चला ना जाए, ख़त्म ना हो जाए, मेरे हाथ से ना चला जाए, ये ना हो, किसी को पता ही नहीं चलेगा। आपको पता लग जाएगा, आपके नसीब से कोई नहीं चीज़ दूर भागती। याद रखिए, ये चीज़ इंसान के अंदर इतना सुकून लाती है कि इसके बाद इंसान को फिक्र ही नहीं होती। और इसको दुआ में क्या कहा अल्लाह के नबी ने, अल्लाहुम्मा ला मानी अली मा आतैत वला मोती अली मा मनात वला यनफउ ज़ल जद्दी मिन कल जद, कि अल्लाह कोई रोक नहीं सकता उस नेमत को जो तू मुझे देना चाहे, और जो तू ना देना चाहे उसको कोई मेरे तक ला नहीं सकता। और किसी भी दौलत माल जिद का लफ्ज़ है ना, वो बहुत लंबा चौड़ा लफ्ज़ है, यानी जो उसकी बिलोंगिंग्स हैं उसको फ़ायदा तभी देती हैं जब तू चाहता है। बस देखिए, है ये अकीदा, अकीदा ना अल्लाह के साथ ताल्लुक, लेकिन इसका अमली इजहार आपके अंदर सब्र और सुकून और मुख्तलिफ खूबसूरत आदतों की सूरत में आएगा। तो याद रखिए, जहाँ हमारी शख्सियत में चुलबुलापन होता है ना, उसके पीछे अकीदे की कोई खराबी। ये लिख ले जुमला, किरदार की हर कमजोरी के पीछे अकीदे की कमजोरी होती है। आप अपने अंदर अल्लाह की मोहब्बत, उसकी बड़ाई, उसका बड़ापन, नबी सल्लम के ऊपर ईमान, ये बढ़ाते जाइए, बाकी सारी चीज़ें अल्लाह अपने रहमत से आपके अंदर देगा। ये कुछ जादू नहीं है, ये कुछ छू मंतर भी नहीं कि कुछ लोगों को अल्लाह ने सब कुछ दे दिया और आपको मुझे कुछ नहीं दिया। क्यों दिया? हमें लेना है बस, इंशाल्लाह। और एक चंद जेम्स, आप अपने उस्तादों के साथ मुखलिस रहें, आपके तालिबे इल्म आपके साथ मुखलिस रहेंगे। ये असूल बना लें और इसी को आप कर लीजिए अपने माँ बाप के नाम पे। आप अपने माँ बाप के साथ मुखलिस रहें, आपके बच्चे आपके साथ मुखलिस रहेंगे। आप अपने उस्तादों को दुआएं दें और इनसे दुआएं लें, आपके तालिबे इल्म आपको दुआएं देंगे और आप उनको दुआएं देंगे। उम्मते मुस्लिमा को इन फितनों से डरना चाहिए जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाफरमानी के नतीजे में आते हैं। तुमने रसूल की नाफरमानी की, तुम्हारी औलादें तुम्हारी नाफरमान हो गईं। टिट फॉर टैट, हमने अपने से बड़े की नहीं मानी तो हमसे छोटों को भी हक है कि वो हमारी ना माने। फिर देखिएगा, दीन का काम इज्तमाई काम है, और मैं बरमला, बरमला मीन ओपनली, क्लियर कट, विदाउट एनी हिंड्रेस, आप कोई दुनिया की सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में मुझे ले जाएं, वो सऊदी अरब की कोई बहुत बड़ी इस्लामिक यूनिवर्सिटी हो या कोई किसी लेवल पे जो लोग दीन का काम कर रहे हैं, मैं ये जुमला वहाँ बोल सकती हूँ। असल दीन इज्तमाईयत है, इज्तमाईयत से कट के दीन भी दीन नहीं रहता, कई फितने शुरू होते हैं। मुश्किल बहुत है, इख्तलाफ राय के साथ जुड़ना बहुत मुश्किल है, मुखालफत है फिर भी जुड़ना बहुत मुश्किल है। आपके इल्म में 19-20 का फ़र्क है उनके इल्म से, हराम तक नहीं है लेकिन मुस्तहब और कह लीजिए कि राजे और मरजूह, यानी रिकमेंडेड और लेस रिकमेंडेड का फ़र्क है, फिर भी जुड़े रहें, टूटे नहीं। घर टूट जाते हैं ना, दोबारा नहीं जुड़ता, जो मर्जी रो लें तड़पें, हाय नहीं नहीं तोड़ना था, नहीं, अब टूट गया। अल्लाह ने हदें दी होती हैं जोड़ने की, लेकिन आना नहीं आने देती। प्लेट टूट गई, अब उसमें अगर जोड़ लगा भी लेंगे तो इस्तेमाल कम ही लोग करते हैं। जुड़े रहे, पेवस्ता रहे शजर से उम्मीदें बहार रख। देखिए, कोई भी गेम होती है ना, मसलन क्रिकेट, थोड़ी सी मुझे उसकी समझ है, एक बंदा छक्का लगाता है पूरी टीम की फतह। लिख ले, टीम वर्क में छक्का कोई भी लगा दे, कामयाबी आपकी होगी। और अकेले बैठकर आप छक्के नहीं, आप उससे भी दो चार आगे लगा दें, 10 लगा दें, जिस दिन आप लगा लेंगे आपकी कामयाबी, नहीं लगा सकेंगे उस दिन फिर आउट। आज दीन का काम क्यों नहीं पनप रहा? मैं कहती हूँ मेरे इधर बैठने का नाम दीन है, मैं आपको आज ये सिखा के जाऊंगी कि यहाँ से मेरे उठने का नाम दीन है। दीन का काम चलता रहे, आप बैठे या आप उठे, आप आए या आप जाए। और ये कहाँ से सीखा मैंने? मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह ने नबी को बुनियाद तो बनाया था, लेकिन उसी नबी की जुबान से कुरान की एक आयत आपको मुझे सुखा दी, अफा इम्मा ता औ कतिलन कलब तुम अला आकाबिकुम। और उसे भी पिछली आयत अगर पढ़ दूं, वमा मोहम्मद उनिल्ला रसूल, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ नहीं थे रसूल के सिवा, यानी उनका स्टेटस रसूल का था। फिर आगे का, अगर वो मर जाएं या मार दिए जाएं तो क्या तुम अपना दीन छोड़ दोगे? और फिर आगे धमकी भी दे दी, वमई यनकलिब अलाकिबैही, जो फिर अपनी एड़ियों पे फिरता है शौक से फिरे, वलै यदुरुल्लाह शैया, अल्लाह का कुछ नहीं बिगाड़ेगा। तो किसी के होने या ना होने से दीन नहीं रुकता। एक जुमला लिखी है मैंने, शायद बिल्कुल 10 दिन में नहीं बोला, आज बोलने लगी हूँ, अभी दिल में अल्लाह ने डाला। अपनी खामियों को छुपाने का सबसे खूबसूरत नुस्खा, इज्तमाईयत में अंदर छुप के कुछ छुपा हुआ पुर्जा बन जाए। जब इकट्ठे होते हैं ना, मसलन मैं आपको छोटी सी मिसाल देती हूँ कि 10 लोग उधर बैठे हुए हैं उस कमरे में, आवाज़ें आ रही हैं, एकदम कोई जाता है, कौन बोल रहा था? कोई नहीं बोलेगा। आप सोचेंगे ये बोल रहा होगा, ये बोल रहा होगा, 10 में से कोई एक ही तो बोल रहा होगा ना, पर आपका बोलना छुप गया, समझ गया ना? हमारी खामियां छुप जाती हैं टीम वर्क में। मेरे अंदर जितनी खामियां हैं ना, मैं आपको सच बताऊं, अगर मैं अकेली काम कर रही होती, कहीं अकेली होती, तो मैं आप में से 10 तक भी ना पहुंचती। मेरी बहुत सारी खामियां अल्लाह ने छुपा ली। खामी को ये ना कहें कि गुना, वीक पॉइंट्स, शॉर्ट कमिंग, मेरे भी हैं, आपके भी होंगे, मेरे ज्यादा हैं, आपके कम होंगे, लेकिन मेरी शॉर्ट कमिंग्स को अल्लाह ने कवर करने के लिए मुझे अच्छे अच्छे साथी दे दिए। तो हमेशा याद रखिए, नाराजगियाँ, दिल खुश नहीं, कटना नहीं है। आपने अक्सर सुना होगा हमारे कल्चर में कहते हैं, सारी जिंदगी रो रो के फिर आखिर में, आखिरी उम्र में मियाँ बीवी में बड़ा प्यार हो गया। हमारी ये लव स्टोरी है, फिल्मों की लव स्टोरी तो वो होती है ना कि लड़का लड़की सारी फिल्म में रोमांस करते रहते हैं, और आखिर में ये अब्बा जी कहते हैं ये शादी नहीं हो सकती, और दोनों मरते हैं और उनकी रूहें आसमान में बादलों में चली जाती हैं कि यहाँ नहीं मिले तो वहाँ मिलेंगे। यानी हमारी यहाँ फिल्म का एंड यही है, और या फिर शादी होती है तो फिल्म ख़त्म, यानी देर इज़ नो रोमांस आफ्टर शादी, हमने तो ये सीखा ना। लेकिन हमारा देसी कल्चर क्या कहता है, चुप करके बैठी रहो, एक दिन ये आएगा तेरे पास, डाली डाली फिर के बंदा तने के रास्ते नीचे आता है, ये बड़े कहते हैं। मैंने ये उनसे सीखी हुई है बातें, कोई कुरान में थोड़ी है। तो वो आखिरी उम्र में बड़े खुश थे, आज बड़े प्यारे कपल हैं, आप कहते वाह अंकल जी आंटी जी स्वीट क्यूपिड कपल, कहते इनकी जवानी तो देखो, लड़ लड़ के मरते थे। अब वो कहते अब जाऊँ किधर, अब तू ही मुझे बर्दाश्त करती है। किसी ने कहा कि जितना साथ पुराना होता है ना उतना प्यारा हो जाता है, 60 साल के बाबा जी 50-55 की बेगम छोड़कर 2 25-25 की नहीं कबूल करेंगे, क्योंकि वो बाबा जी की झिड़कियाँ, उनकी गालियाँ, उनकी डांटें, उनकी शुगर और उनका ब्लड प्रेशर, वो 50-55 साल की एक जीरक औरत ही बर्दाश्त कर सकती है, 25 वाली दोनों छोड़ जाएंगी उसको। तो मैं छोड़कर दो नहीं लेता, एक तू ही काफ़ी है। अब ये सारी बातों से क्या समझाया, जुड़े रहेंगे एक दिन हालात ठीक हो जाएंगे। औलाद के लिए भी यही हुक्म है, आपको पता है हज़रत याकूब हमारे मुहसिन है, तुम्हारे बच्चे को कत्ल भी कराए हैं ना तुम्हारे बच्चे, तो उन बच्चों से क्या ना करो, ताल्लुक ना तोड़ो। याकूब अलैहिस्सलाम ने बेटों को घर से निकाला, आग किया, पुलिस को बुलाया, 911 कॉल किया, नहीं किया, बस कह दिया मुझे पता है जो तुम कह रहे हो, वल्लाहुल मुस्तानु अला मा तसिफून, अल्लाह मेरा मददगार है जो तुम मेरे से बातें बना रहे हो, बल सब्वत लकुम अनफुसुकुम, तुम्हारे नफ्सों ने एक बड़ी बात को छोटा कर दिया। सारी समझती है हजरत याकूब को, लेकिन सब्र, औलाद को नहीं काटा, कल में औलाद की इसलाह हो गई। तो याद रखिए इसलाह की एक ही सूरत है, जुड़े रहिए। ये जो आज उम्मत का मिजाज बन गया ना, कट कट, मैं तुमसे नहीं मिल सकती, कट, पहले उनके साथ ही छोड़ दिया, मस्जिद अलग, तुमने मसा कर लिया, छोड़ दो। अल्लाह करे मेरी ये बात दुनिया के हर मुसलमान दीनदार पे पहुंच जाए, मुखालफतों थोड़े थोड़े फर्क के साथ साथ चलते रहो, एक दूसरे पर असर डालोगे, इंशाल्लाह एक दिन अगला भी तुम्हारी बात को मानेगा अगर तुम्हारी बात वाकई सच्ची है। लेकिन जिस दिन आप काटते हैं ना, उस दिन दीन की जड़ कट जाती है। तो दीन इज्तमाईयत, मैं किसी को अलग से अब काम करता देखो तो मैं इम्प्रेस नहीं होती, बिलीव मी, पता नहीं ये मेरी अब सोच कैसी बनती जा रही है दिन ब दिन। जहां हैं अगर आपको कोई भी अच्छा लग रहा है ना, आप उनके साथ लग जाए। आप कहते हैं वहाँ क्लास होती है बहुत अच्छी होती है, मैं मूव हुई, अब फिर मैं अपने घर में क्लास शुरू कर लेती, नहीं कभी ना करें, पहले उस क्लास में जाइए, देखिए करते क्या, अगर अकीदा ठीक है, सब ठीक है, थोड़ा फ़र्क है, तो आप उनको अपनी खिदमात ऑफर कर दें, मैं कुछ पढ़ लिख के आई हूँ, अगर आप चाहें तो मैं आपकी हेल्प कर देती हूँ। अगर आपको उधर बहुत बड़ी ख़राबी दिखती है फिर भी इसका यही हल है, पूरी कोशिश कर लीजिए उनके साथ मिलकर काम करने की। उनके मुकाबले पे तो आप नहीं करेंगे, आप कहेंगे उनका तरीका नहीं मुझे समझ आता, वो कहते हैं तुम बैठ के सुनो, तुमने कुछ करना नहीं, सारी हुज्जतें तमाम कर लीजिए, लेकिन कभी उम्मत की, जो आज फिरका वारियत की बात करता है, वो उम्मत की जड़ काटता है, और कटी फटी उम्मत आज हमारी गाजर मूलियों की तरह कट रही है। अल्लाह हमें माफ़ करे। फिर आप देखिए कि इज्तमाही काम में हर एक ईंट की तरह जुड़ा होता है, तो अपने आप को वो ईंट मत बनाइए कि जो हिली तो चार ईंटें तो कम से कम उसके साथ की जो हैं वो हिलेंगी। आप ना चाहते हुए भी दीन को कमज़ोर करने का जरिया बन गए। एक ईंट अपनी जगह से हिले तो साथ वाली ईंटों को भी हिला देती है। अच्छा, ईंटों को आप रख दें एक दूसरे के ऊपर, यानी दीवार बनाई तो आप नीचे ईंटें रखे 10, फिर 10 10, तो दीवार बन जाती है। एक हवा का धक्का नहीं, जरा बच्चा ही आएगा ना, धक्का लगाएगा, सारी गिरेंगी। जितनी मर्जी ईंटें हों, जब तक बीच में जोड़ने वाली चीज़ नहीं होगी, सीमेंट और रेत का एक महलूल सा होता है प्लास्टर, वो नहीं होगा, दीवार नहीं जुड़ेगी। दिलों को जोड़ने वाली चीज़ उल्फत है, मोहब्बत, फातह आलम। तो लिहाजा एक दूसरे को देखकर दिल खुश रखें, और फिर इंशाल्लाह छोटी छोटी चीज़ें तो बहन भाइयों में होती हैं। आजकल तो मैं कहती हूँ शुक्र है कि तलाक बहन भाइयों में नहीं होनी, कईयों ने दे चुकी होती है अभी तक। अल्लाह माफ़ करे हम सबको। अपना नाम रख लैम कनेक्टर। मैं जोड़ने वाली हूँ, मैं तोड़ने वाली नहीं हूँ। जोड़िए, तोड़िए नहीं। चलिए, अपने आप को भी और लोगों को भी अल्लाह से जोड़ना है इंशाल्लाह ताला। वल्लाहु बिकुल्ली शयइन अलीम। अल्लाह हैज़ फुल नॉलेज ऑफ एवरी थिंग। इसको सुनने पढ़ने के बाद क्या होता है? देखिए, दो रवैये उभरते हैं इस आयत को सुनकर। आप अपना टेस्ट कर लीजिए घर जाके। जब आप ये सुनते हैं ना, कोई भी मामला ज़िंदगी में आता है, सारा दिन चलते हैं छोटे बड़े, हर एक वक्त के साथ, हर एक के डिफरेंट होते हैं, लेकिन होते हैं ना। अगर आपने ये आयत सुनी कि वल्लाहु बिकुल्ली शयइन अलीम, तो आपका दिल खिल गया, अल्हम्दुलिल्लाह। तो आप सच्चे हैं, अल्लाह तुझे तो पता है ना, औरों को नहीं पता। अल्लाह तुझे तो पता है ना मैं क्या सोचती हूँ, मैंने कितनी कोशिश की, मैं कितनी सच्ची हूँ, मैं कितनी सिंसियर हूँ। और दिन में 20 कोशिशें सिर्फ इस सोच के साथ लोगों के साथ अच्छी कर दिया करें कि वो जवाब अच्छा नहीं देते, पर अल्लाह तुझे तो पता, मैं तो तुझे दिखा रही हूँ। और अगर आप सुने वल्लाहु बिकुल्ली शयइन अलीम और अंदर खिंच पड़ गई, दिल हिल गया, तो समझ जाइए कि आप गड़बड़ करके आए हैं। कि वो उसको नहीं भोले भाले को पता चला, वो इतनी सीधी थी, उसको मेरी चालाकी नहीं पता चली, अल्लाह को पता मेरी। जितना ज़्यादा हमें अल्लाह ताला के जानने का एहसास होगा ना, उतने हमारे मामले सीधे होंगे। आप देखिए ना कि अक्सर लोग एक चीज़ कहते हैं जो मेरी डिक्शनरी से निकल चुकी है, तारीफ। मसलन आप अपने ऊपर लेकर सोचिए, आपने सारा दिन लगाकर खाना बनाया, मेहमान आए, बड़े अदब से, सलीके से, मोहब्बत से, अच्छे तरीके से खाना खा के चले गए, लेकिन तारीफ का एक लफ्ज़ नहीं बोले, आप क्या सोचते हैं? और कुछ लोग कहते हैं फिर बहाने बहाने से पूछेंगे, ठीक पका है ना, आज लगता है गोश्त जरा कच्चा रह गया। मतलब मुराद ये कि तारीफ करें, जब तक लोग मुंह से तारीफ ना करें। हालांकि देखिए, उनका खाना और खाने का माशाल्लाह ख़त्म हो जाना किस बात की दलील है? कि असल चीज़ काबिलियत नहीं, कबूलियत है। खा गए मियाँ ने, खा लिया, क्या ये तारीफ नहीं है कि खा लिया? और वैसे कि वैसी प्लेट वापस आ जाए तो आप समझिए कि कबूल नहीं किया। लेकिन हम कहते हैं तारीफ नहीं की, बड़ा मज़ा आ रहा है, बड़ा अच्छा बना है, गोश्त कितना अच्छा गला हुआ है, आपके हाथ में लज्जत बड़ी है, फिर हम कहते खिलाते अल्लाह के लिए, माजरत है, तारीफों के लिए खिलाते हैं। इसको निकाल के फेंक दीजिए, मेरी तारीफ हो ना हो, मेरा जिक्र हो ना हो। मिसाल है, घर में ज्वाइंट फैमिली सिस्टम थी, हो सकता है सारा खाना बहू ने बनाया हो, या बेटी ने बनाया हो, कोई भी बनाया, या दो तीन बहुओं में से किसी एक ने बनाया हो। अब सारे घर की इज्जत बन गई कि अम्मी जी ने दावत की और माशाल्लाह बड़ी अच्छी दावत हो गई, तो वो सर पे पट्टी बांध के बैठ गए, मेरा जिक्र ही नहीं किया कि खाना तो मैंने सारा बनाया था, तो वो सफाई तो सारी मैंने की थी, दूसरी बोले, और प्लेटें तो सारी मैंने धो के इस टेबल पर रखी थी, तो फिर अल्लाह किधर है? देखिए, एक छोटी सी मिसाल देन में अल्लाह ने दी है। कभी आपने किसी एग्जिबिटर को देखा है? आर्टिस्ट होते हैं ना, पेंटिंग्स करते हैं, अपने शाहकारे बनाते हैं, लेकिन उसको बाहर दूसरों के सामने डिस्प्ले नहीं करते। कभी आप गुजरते हुए देखेंगे ना, कोई शीशों वाली दुकान है तो उसके अंदर अखबारें लगी हुई, कागज़ लगा हुआ, तो आप समझ जाइएगा कि अंदर कुछ ये सेट कर रहे हैं और एक ही दम ये दिखाएंगे बाद में। जिसने एग्जिबिट करना होता है, एग्जीबिशन लगानी होती है ना, वो अपनी प्रोडक्ट को पहले नहीं दिखाता, फिर वो हाहा कैसे होनी है, कितनी अच्छी चीज़ है। मोमिन इस दुनिया में इस शख्स की तरह होता है जिसने अपने कारनामे और अपनी खूबियाँ आखिरत में एग्जिबिट करनी है। हम एग्जिबिशन लगाएंगे इंशाल्लाह। वहां तो इतनी बड़ी एग्जीबिशन लगनी है, फमई या मल मिसकाल जर्रतिन खैरिन यरा, वहां खुश होंगे अपने कतरे कतरे देके। वही के कांसू भी वहां पता नहीं मोतियों जैसा चमका होगा, जो अल्लाह के खौफ से या अल्लाह के रास्ते में रोए होंगे। वो कदम जो मट्टी से भर चुके थे, क्यामत के दिन अल्लाह दिखाएगा, क्योंकि फमई या मल मिसकाल जर्रतिन खैरिन यरा। और फिर अल्लाह ना करे कि शर रही जरा देखना पड़ गया तो सारी करतूत खुल जाएंगे। आप सोचे ना, सारी खूबियां भी दिख गई, लोग हमारी वाह वाह करे, माशाल्लाह कामयाब कामयाब माशाल्लाह। पहले ही पता था आप तो बहुत लगते ही नेक थे। फरिश्ते कहते ठहर जाओ जरा, भी इसकी एक और पटारी भी है, और उसमें से जो हमारे दिलों के कीने और बुग़्ज़ और हसद रकाबते गंदगियां निकली, अल्लाह की पनाह, बू आएगी, सांप बिच्छू हैं ये सब, इनको निकाले बगैर बड़े काम नहीं होंगे आपसे। ये भी बता दूं, जिनको भागना होता है ना, वो अपने आप को हल्का रखते हैं, बहुत वजन उठा के ज्यादा दूर नहीं जाते। आप जितनी अपनी दुनिया भारी करते जाएं, आपके लिए चलना फिरना सफर करना मूव करना मुश्किल होगा। हल्के फुल्के रहेंगे, भागेंगे। खिलाड़ियों के कभी कपड़े तो देखें, इतने पतले सॉफ्ट कपड़े, स्ट्रेची कपड़े, के उनके भागने में भी रुकावट ना है। तो जिंदगी में ये सारी नफरतों का और गंदे जज्बात और सोचें और फिक्रें, इसका बोझ उतार के फेंके सर से, कि मैंने अल्लाह तेरे रास्ते में भागना, कुछ बीमारी मैंने नहीं लेनी, अल्लाह जी सॉरी बस बहुत ले ली, अब नहीं लेनी, मैंने भागना। मैं हर वक्त दुखी रहती थी, कॉम्प्लेक्स का शिकार थी, फलाह ने ये कह दिया, उसकी ये मेरी, अब ख़त्म वो बातें, वो ख़त्म हो गई, अपना नाम लेके के वो मर गई। अब एक नई ज़ात मेरे अंदर से निकलेगी, नई शख्सियत आएगी इंशाल्लाह ताला। फिर आगे देखिए, की टू सक्सेस, सिंसेरिटी, फोकस्ड, कमिटमेंट, डिसिप्लिन। अल्लाह हमें सबको ऐसा कर दे, मुखलस भी हो जाएं। इसमें काफ़ी लोग कहते हैं कि हम मुखलस हैं, फोकस नहीं होते, फिर कुछ अगली सीढ़ी पे आ जाते हैं, फोकस भी हो जाते हैं, लेकिन फिर कमिटमेंट नहीं कर पाते। कमिटमेंट तक भी आते हैं, सबसे मुश्किल जिस चीज़ को अल्लाह के रास्ते की दावत में कायम रखना होता है, वो डिसिप्लिन है। आप कहते हैं कि एक जंग में हाबड़ बो तो बड़ पड़ी, तो जीती भी जंग हार में बदल गई, नबी का दान शहीद हो गया, 70 सहाबा शहीद हो गए, ये डिसिप्लिन की कमी थी। आज से ही लिख लें, अगर कल पीछे से सारे सफ़े फाड़ भी देना कॉपी के, जो करना है डिसिप्लिन के साथ करना है। और मैंने किसी जगह के इंतज़ाम को बिगाड़ने का जरिया नहीं बनना, चाहे मैं सामे हूँ या चाहे मैं उसमें हूँ या जो भी हूँ, मैं किसी भी जगह का एक पुरजा हूँ, मैंने अपनी जगह पर रहना। आप देखिए, गाड़ी में ब्रेक भी है, क्लच भी है, एक्सीलेटर भी है, स्टेयरिंग भी है, और ऑफ कोर्स इंजन और बहुत कुछ है। हर पुर्जा अपना अपना काम करता है, तो गाड़ी चलती है ना, तो स्टेयरिंग अपनी जगह ज़रा ब्रेक की मदद करने लग जाए, और क्लच की मदद करे ब्रेक, गाड़ी चलेगी कि रुकेगी। अपना काम कीजिए, आपको पता होना चाहिए आपका क्या काम है। पता नहीं, देखेंगे जा रहे हैं, कर लेंगे, सब काम हो जाएंगे, तो ब्रेक भी यही कहते देखती हूँ पता नहीं करना क्या, देखती हूँ, स्टेयरिंग कहते पता नहीं गाड़ी रोकनी है या चलानी है, कभी कोई गाड़ी चलेगी। अगर हर पुर्जे को अपना काम ना पता हो, तो डिसिप्लिन का मेन असूल यह है कि आपको पता हो कि आपकी लिमिट्स क्या है, करना क्या है, करने क्या आए हैं। और हम तो इसको, ऐसे बंदे को अल्लाह वाला कहते हैं, क्या करना है पता नहीं, देखते हैं सोचते हैं। नहीं, हमेशा अपने आप को घर से निकलते हुए पूछें, आज करना क्या है, आज क्या सुनने जा रही हूँ, आज क्या सुनाने जा रही हूँ। वमिनन नासि मन याबुदुल्लाह अला हर्फिन, सूरत हज 11। हर्फ क्या होता है, किनारा, एज, ये जब हम कहते हैं ना जीम, ऐसे ऊपर फिर ऐसे, हमारे ये एजिस मिलके लफ्ज़ बनते हैं, अगर सीधी लाइनें खींचते जाएं तो अलिफ बात आ तो नहीं बनेगी ना, तो हर्फ किनारा, एज। कुछ लोग ऐसे हैं जो दीन के बस किनारों पे रहता है, अल्लाह कहता है एंटर इस्लाम कम्प्लीटली, उदखुलु फिस्सिल्मि काफा, बी अ फुल टाइम मुस्लिम, डोंट बी ऑन द एज। मुझे बताइए कि जब कश्ती डोलती है तो सबसे पहले किसके गिरने का खतरा होगा पानी में, एजिस वाले, बीच वाले फिर सिक्योर्ड है। कभी जहाज में बैठें तो आप तो, वो हमें सीटों की पोजीशन तक भी पता है कि कहाँ बैठें तो झटके कम लगते हैं और किधर ज्यादा मजा आता है। यकीन करें, बिल्कुल पीछे टेल में अगर आप बैठे ना, झटके सबसे ज्यादा पीछे आते, क्योंकि आप इंजन से बहुत दूर हैं। बहुत करीब होंगे तो और हिसाब है, जितना मिडल ऑफ द पार्ट जहाज में होंगे ना, उसमें आप इंजॉय करेंगे, और दीन का इंजॉयमेंट मिडल में है। कैसे, पिज्ज़ा, सबसे टेस्टी पार्ट पिज्ज़े का कौन सा, और वो ये एक ऊपर से आया और आपका उछक के ले गया, आपने संभाला हुआ था इसको आखिर में खाऊंगी, और वो देना पड़ गया किसी को, और किनारों का हार बना के अक्सर कहते हैं अब ये मांगो तुम गले में पहन लो, किनारे सूखे होते हैं, रूखे होते हैं, अंदर ग्रेवी, लिप, हर चीज के अंदर मजे की चीज होती है। तो अल्लाह करे कि हम दीन को एंजॉय करें। शाइन ऑन, स्प्रेड इस्लाम, चमकिए। कैसे? स्प्रेड इस्लाम, इस्लाम को फैलाइए फिर चमकिए। अल्लाह करे कि हमें भी अल्लाह ताला इसकी तड़प लगा दे। ये अगली तो बहुत ही ज़बरदस्त है। आप वही काटेंगे कल जो आज बीज डालेंगे। गंदम लगाकर चने की उम्मीद रखना ना समझी है। बस कई लोग यही किए बैठे हैं, गुनाहों के कांटे बो रहे हैं, और वहाँ हम जन्नत के फूल लेना चाहें, ये नहीं हो सकता। वट एवर यू नीड मोर ऑफ इन लाइफ, गिव इट अवे। क्यों? किसकी मिसाल है कुरान में? जिस चीज़ की आपको बड़ी ज़रूरत है अल्लाह कहते फेंको उसको। चलिए मैंने तो बहुत ही खोल के बता दिया, लफ्ज़ बोल दिए हैं जो कुरान में है। लन तनालुल बिर्र हत्ता तुन्फिकु मिम्मा तुहिब्बुन, और या मूसा माफी यमीनी, कि तेरे दाएं हाथ में क्या है? अल्लाह ये मेरा सा है, करते क्या हो? कहा इससे मैं अपनी बकरियों के पत्ते झाड़ता हूँ और इसमें मेरे बड़े फायदे। अल्लाह कहता फेंको। हैं, मैं तो तरीफे कर रहा था, अल्लाह कहता फेंक दो, और जब फेंका तो सांप बन गया, हिलता हुआ, तो अल्लाह कहता खुशा पहले कल के। हाँ तेरे फायदे की चीज़ है, पर मैं कहता हूँ फेंकिए समात। और जब सांप है का पकड़ो, सांप कहता वो हराम था और मूसा ने पकड़ा तो वो उनका सा बन गया। ये कहानी है, ये सूरह ताहा में पढ़ चुके हैं। हमेशा याद रखिए, अल्लाह के रास्ते में मनपसंद चीज़ें देंगे तो फिर वहाँ मनपसंद मिलेंगी। ये दुनिया रब चाहिए तो वो दुनिया मन चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह।